चूंकि हम श्री अरविंद की भविष्यवाणियों को आधार बना करके उनकी काव्य की रचना के द्वारा एक अलग प्रकार का अप्रोच है, मैं नहीं जानता हूं कि कभी भी ये हुआ है, केवल यहाँ नहीं कहीं पर भी, बहुत सारे सेमिनार्स इत्यादि मैंने पार्टिसिपेट किया है भारत में और बाहर, श्री अरविंद के काव्य पर भी नहीं हुआ है और श्री अरविंद की भविष्यवाणियों पर भी नहीं हुआ है। बात बात आती है और चली जाती है, मतलब एक पासिंग है कोई, पर ये साधुवाद कि ये विषय चुना जो बहुत अलग विषय है, सुंदर विषय है। तो श्री अरविंद ने चार मुख्य बातों पे क्षेत्रों में भविष्यवाणी की है, और वो केवल भविष्यवाणी नहीं है, जैसा कि मैंने सुबह भी बताया, भविष्यवाणी हम कुछ होने वाला है उसको देख रहे हैं, किंतु ये भविष्य सृष्टा की भविष्यवाणी है, भविष्य दृष्टा की नहीं। भविष्य सृष्टा यानी अगर मान लीजिए कोई किसान है, उसने भूमि में बीज डाले हैं, तो अगर आप उससे पूछेंगे इस भूमि में क्या निकलने वाला है, तो आपको एकदम स्पष्ट उत्तर देगा, और वो कैसे उत्तर देगा, वो जमीन को देख के उत्तर नहीं देगा, वह जानता है कि उसने क्या बीज डाले हैं। हमारे उत्तर होते जमीन को देखकर, ये देख के वो देख के, यहां तो ये होता है वहां तो वो होता है, क्योंकि उसने बीज डाले वो बताएगा। लेकिन ये भी सच है कि बीज के डालने और वृक्ष के उगने में, फल फूल लगने में एक एडवेंचर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम इफ्स बट्स चैलेंजेस, और उस रास्ते में भी जो किसान है उसका काम बीज डाल के समाप्त नहीं हो जाता। तो इसीलिए माता जी जब श्री अरविंद फिजिकल बॉडी से पीछे की ओर जाते हैं, तो माँ क्या क्या कहती, ही हैज प्रोमिस्ड दैट ही विल बी प्रेजेंट इन अवर मिड्स, नॉट ओनली एज ए कॉन्शियसनेस बट एज ए डायनामिक प्रेजेंस, केवल ये नहीं कि जो वॉच कर रहे हैं, और वो ये उनका कृत्य है कि वो उसके अंत तक परिसमाप्ति पर ले जाएंगे। तो श्री अरविंद उन भविष्य वेताओं में से नहीं है जिन्होंने कह दिया ऐसा होगा, बात खत्म हो गई, आपको मानना है नहीं मानना है, और फिर कालांतर में आप फिट नहीं करते रहो, उन्होंने कहा था ये हुआ नहीं हुआ। श्री अरविंद के ही जिम्मे यह भी है कि वो उस भविष्य को पूर्णता तक ले जाए। तो उन्होंने किस किस विषय पर भविष्यवाणी की है, सबसे पहले जिससे हम सबका संबंध है हमारे अपने जीवन, और वह है मनुष्य के ऊपर। अब मनुष्य के ऊपर भविष्यवाणियाँ बहुत सारी हुई हैं, और उसमें से एक है कि प्रलय आएगी, फिर अंत में एंड क्या है, मिट्टी का बना है मिट्टी में चला जाएगा, इत्यादि इत्यादि, मतलब ऐसी जीवन बहुत डिप्रेसिंग है, उनको पढ़ के लगता है कि वास्तव में कुछ नहीं है। लेकिन इन्होंने मनुष्य के अंदर से एक बृहत्तर बीइंग आएगा जिसकी बात हम लोग अंत में करेंगे कल या परसों। फिर उन्होंने पृथ्वी के बारे में भविष्यवाणी की है, पृथ्वी के बारे में तो बड़े सशक्त शब्दों में की है। एक बार किसी ने श्री अरविंद से पूछा कि ये आपका आपकी क्या राय है इस सिविलाइजेशन के बारे में, तो श्री अरविंद कहते हैं मैं इसके बारे में तो निश्चित रूप से अभी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि उस समय सुपरमाइंड नहीं डिसेंड हुआ था, मैनिफेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन इतना निश्चित है कि पृथ्वी बचा ली जाएगी, ये तब भी उन्होंने कहा था, दिस इज सर्टेन दैट द अर्थ विल बी सेव्ड। इसका अर्थ ये था कि मनुष्य विकसित होगा, बहुत सुंदर बात है, नहीं विकसित हुआ तो प्लान बी प्लान सी भगवान का तैयार है, अर्थ विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये उन्होंने बहुत पहले कि ये इस बार प्रलय नहीं आएगी, पृथ्वी को बचा लिया जाएगा। फिर स्वाभाविक है अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी पे द्वीप महाद्वीप राष्ट्र हैं, तो उसमें भी एशिया के बारे में, यूरोप के बारे में और भी देशों के बारे में उन्होंने भविष्यवाणियां की हैं। भारत एक केंद्र बिंदु है जो नवयुग है उसका, तो भारत के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा उसको फ्रॉम द एंगल ऑफ पोएम्स टच करेंगे। तो मनुष्य के बारे में, पृथ्वी के बारे में और भारत के बारे में, द्वीप महाद्वीपों के बारे में, और इसके साथ साथ वे चीज़ें जो अभी जिनसे मनुष्य खेलता है, जिनको वो अपनी शीट्स की एक्टिविटी समझता है, उन फील्ड्स के बारे में भी उनकी भविष्यवाणी है. फॉर एग्जाम्पल, मनुष्य अभी तक किन चीजों को अपना सबसे उच्चतम, मानव की प्रयोगशाला में प्रकृति ने क्या प्रकट किया है. एक जो मनुष्य की पॉलिटिक्स है उसके बारे में, हाईएस्ट फ्लावर किसको कहते हैं, डेमोक्रेसी. अब डेमोक्रेसी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. इसके मूल में अगर हम जाएं तो देखते हैं हम, पहले डिक्टेटरशिप है, फिर डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी के साथ साथ हम देखते हैं अलग अलग आइडियल्स है, कम्युनिज्म के आइडियल हैं. ये सारे जो आइडियल हैं कैसे ये प्रकट होते हैं, तो मनुष्य का विकास भी ये चार चार सीढ़ियों से चढ़ के होता है. एक होता है जब वो ब्रूट है, पशु जैसा है, मेरी मर्जी, जो मैं चाहूंगा करूंगा, एक ईगो, फॉल्स इंडिविजुअलिटी, मेरी जो मर्जी है मैं वो करूंगा. तो वहां पे क्या होता है, नियम कानून अनुशासन, ये प्रारंभ होता है. दूसरा, जहां वो समूह को, सोसाइटी को ज्यादा महत्व देता है, तो मनुष्य की ट्रेनिंग होती है जो समाज चाहेगा उसके अनुसार तुम्हारा जीवन होगा, तुम्हारा जीवन समाज के लिए है. तो वहां से हम देखते हैं कि दो प्रकार की चीजें निकलती हैं. एक होती है सोशलिज्म का एक कंसेप्ट आता है, दूसरी ओर एक राजा आता है, एक डिक्टेटर जो कंट्रोल करेगा, समाज को व्यवस्थित रखना है. व्यक्ति की उसमें बहुत ज्यादा जगह नहीं है. मैं ऐसा चाहता हूं, मैं, मेरे विचार से ऐसा होना चाहिए, इसकी आपकी राय ओपिनियन कहा जाता है, जैसे कि पूछी नहीं जा रही है. फिर उससे तीसरी स्टेज का जो विकास होता है, जो अब हम लोग देख रहे हैं, वह द एज ऑफ इंडिविजुअल एथिक, जहां व्यक्ति स्वयं ही आत्मनिरीक्षण करके, आत्म अन्वेषण करके, स्वयं उसको लगता है नहीं जस्टिस होनी चाहिए, नहीं प्रेम होना चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए. अब हो सकता है समाज से या रिलीजन से उसका टकराव हो रहा हो, तो अभी ये तीसरी स्टेज है जिसमें से इंडिविजुअल निकल रहे हैं, और हर एक इंडिविजुअल अपना एक मत और उस मत से जुड़ के विचारधारा, और ये हम लोग देख रहे हैं कि अभी चल रहा है संसार में, जिसको कई लोग समझ नहीं पा रहे. और इसके बाद क्या आने वाला है, जब ये इंडिविजुअलिटी की एज शुरू हो जाती है, जब हर व्यक्ति कहता है मेरा अपना मत है, तो क्या उसका प्रोडक्ट होता है, डेमोक्रेसी. हर व्यक्ति कहता है और कुछ नहीं तो वोटिंग राइट तो हमको दे दो, तो वोटिंग राइट उसको मिल जाती है. लेकिन नेचुरली डेमोक्रेसी का अंत उसके प्रारंभ में ही लिख दिया गया है, और श्री अरविंद इसकी बात बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं. माता जी का एक विजन भी है जहां वो बताती हैं कि श्री अरविंद खेलते खेलते एक बॉल लाते हैं और माँ से कहते हैं, मुझे लगता है अब इसको बदलने का समय आ गया है. हम लोगों ने सुना है ना क्रिकेट में T20 ये सब 50 ओवर मैच, बॉल बदलने का समय. तो माँ कहती हैं, दैट बॉल इज ओल्ड एंड वर्न आउट, इट इज डेमोक्रेसी. अब उसकी जगह क्या आएगा, हिंट्स हैं. एक हिंट है ओलिगार्की, लेकिन वैसी ओलिगार्की नहीं जो रूस में प्रैक्टिस होती थी, जहां कुछ धनाढ्य लोग कंट्रोल करते थे. ये ओलिगार्की होगी जहां पे वे लोग जो चेतना में उत्कृष्ट हैं, जो वास्तव में योगी ऋषि संत समान हैं चेतना में, वे लोग धीरे धीरे प्रकृति उनको शीर्ष पे लाएगी और वे लोग राष्ट्र को गवर्न. लेकिन ये कुछ लोग होंगे जिनके अंदर ज्ञान है, प्रज्ञा है, लेकिन ये भी एक पासिंग फेज है. उसके बाद जो आएगा वो डिवाइन एनार्की है, दूर की बात है. और डिवाइन एनार्की का अर्थ है हर व्यक्ति अपने ही अंदर स्पॉन्टेनियसली उसके अंदर भगवान प्रकट होंगे, उसको गाइड करेंगे, उसको बाहर से किसी प्रकार के डिसिप्लिन, न पुलिस लॉ, किसी चीज की जरूरत नहीं है. और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो चार युगों का वर्णन है, तो सतयुग में भगवान यज्ञ पुरुष के रूप में हर एक व्यक्ति के हृदय में प्रकट होते हैं. और मत्स्य अवतार की कहानी में भी आती है ये बात कि जब राजा सत्यव्रत, देखिए नाम ही देखिए, ट्रुथ से चल रहे हैं, और वो जा रहे हैं जब बोट में बैठ करके नाव में, तो भगवान विष्णु हर एक के हृदय में प्रकट होकर वेदों को प्रकट करते हैं. तो ये भावी काल में ये होने वाला है. ऑलरेडी इस तरफ अगर हम आहट सुने तो दिखाई दे रहा है कि उस दिशा में चीजें बढ़ रही हैं, जिसकी बात हम लोगों ने पढ़ी कुछ समय पहले, कि जब मनुष्य धीरे धीरे अपनी पाप वृत्तियों को त्यागेगा. और ये मनुष्य के हाथ में नहीं है, वैसे मनुष्य के हाथ में बहुत कम था. वो समझता है कि उसके हाथ में है, ये भी एक भाव दिया जाता है उसको, और ये आवश्यक है, नहीं तो वो बहुत अकर्मण्य होकर बैठ जाएगा. उसके हाथ में नहीं है, श्री कृष्ण तो निर्णय ले चुके हैं. हाथ में इतना है कि आप विच साइड ऑफ हिस्ट्री डू यू वॉन्ट टू स्टैंड. जैसे माँ ने बड़ी सुंदर सी बात कही, men, countries, continents, the choice is imperative. Manushya, rashtra, dweep samuh, chunav anivarya hai. Kaun sa chunav? Truth or the abyss, satya or rasatal. तो ये चीजें अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि पहले कही हुई बातें धीरे धीरे अब कुछ धुंधला हट रहा है और इवन द ब्लाइंड इज एबल टू सी कि किस दिशा में हम जा रहे हैं. तो मनुष्य की इन एक्टिविटीज में एक पॉलिटिक्स है वो बदलेगी. दूसरी एक्टिविटी जिसके द्वारा उसने प्रगति की है वो फिलॉसफी है. तीसरी है रिलीजन. रिलीजन ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है मनुष्य के विकास में. किंतु क्या रिलीजन अंतिम सत्य है मनुष्य का? विज्ञान के द्वारा प्रगति की है किंतु विज्ञान जैसी जैसा अभी है क्या यह उसका अंतिम सत्य है या एक अलग प्रकार का विज्ञान और धर्म का एक नया स्वरूप प्रकट होगा? ये हम लोग आगत कविता में पढ़ेंगे. और कविता का नाम है विजन ऑफ साइंस. तो शेरविंद विज्ञान का क्या होने वाला है और उसमें रिलीजन भी आता है. ये कलेक्टेड पोएम्स में है पेज 204 पे. और यहां श्री अरविंद तीन एंजल्स की बात करते हैं जो मनुष्य को गाइड कर रहे हैं. एक है रिलीजन. अब रिलीजन को का हिंदी नहीं है कुछ, जैसे धर्म का इंग्लिश नहीं है कोई. क्योंकि रिलीजन एक वेस्टर्न मानसिकता से निकला है और रिलीजन से जो वेस्टर्न मानसिकता में अर्थ है हमको उस अर्थ में ही लेना चाहिए यहां पे कि ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी जो भगवान की ओर ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं. एक मत है, एक संप्रदाय है. इसका अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो मत संप्रदाय. उसके नियम होते हैं, उसके अनुसार व्यक्ति बंधा होता है. तो यहां रिलीजन से उसकी बात है. रिलीजन यहां मनुष्य के अंदर प्रकट होने वाले पुण्य भाव से नहीं है. ये रिलीजन का अर्थ है यहां पर मत संप्रदाय, और वो भी जब ऑर्गेनाइज्ड होते हैं जिनके द्वारा इंस्टीट्यूशन के माध्यम से व्यक्ति कि भाई भगवान ने ऐसा कहा है, हमारी किताब में ऐसा लिखा है, इसलिए वो जीवन चलाएगा, तो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है. और इसका रोल रहा है एक समय पर. और दूसरा एंजिल कौन है? विज्ञान. विज्ञान ने भी हमारी सहायता की है. कई बार उसने हमको रिलीजन जब बहुत अधिक केवल एक अपनी मनमानी और वो स्वयं मनुष्य को उसके ज्ञानवर्धन को रोकता है, तो विज्ञान ने आकर के रिलीजन को अपनी जगह दिखाई है. कुछ रिलीजन नहीं मानते अभी, वो अलग बात है. उनके अनुसार धरती अभी भी चपटी है और मैं उसमें नहीं जाऊं तो अच्छा है. तो यहां पर श्री अरविंद तीन एंजल की बात. तीसरा कौन है ये अभी सस्पेंस रहे तो अच्छा है. आई ड्रीम्ड दैट इन माई सेल्फ द वर्ल्ड आई सॉ. ये भी 1900 के करीब की कविता है. श्री अरविंद ने विश्व चेतना में प्रवेश करके, हम लोग पढ़ेंगे कल श्री अरविंद के कुछ अनुभव, कि कैसे वो सारी सृष्टि को अपने ही अंदर, जो उनके अंदर हो रहा है वो देख रहे हैं और जान रहे हैं. तो विद इन माई सेल्फ द वर्ल्ड, इन माई सेल्फ द वर्ल्ड आई सॉ वेयर इन थ्री एंजल्स स्ट्रोव फॉर मास्टरी. तीन थे एंजल्स, देवता या देवियां, जो अंदर में मनुष्य के मास्टरी की ओर ले जा रहे थे. लॉ वॉज वन, क्लियर क्लियर विजन एंड डिनायल कोल्ड, येट इन हर लिमिट स्ट्रांग प्रिसम्प्चुअस बोल्ड. लॉ, विज्ञान, जो नियम है प्रकृति के, कुछ नियम है उसके अनुसार आपको चलना है. और वो क्या लॉ कहां से निकलती है? माइंड से. माइंड ने स्टडी किया और उसने नियम बना दिए. आपको इसको स्वीकार करना है क्योंकि ये बंदी है. रिलीजन से भी लॉ निकलती है लेकिन उसकी बात बाद में करते हैं. शेरविंद क्लियर विजन ऐसा है, कोरोना होगा तो मृत्यु निश्चित है या आपका SPO2 जाएगा. नियम, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये भी एक प्रकार का विज्ञान है. ये करोगे तो वो होगा, कॉज एंड इफेक्ट का जो एक संबंध है. तो वो क्या है? इंटेलेक्चुअल, क्लियर, प्रिसाइज. आप होंगे ईमानदार, भाई देखो, लेकिन आप ईमानदार हो या बेईमान हो, जो नियम है सृष्टि के सब पे लागू होते हैं, विधाता के नियम है. इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं क्लियर विजन एंड डिनायल कोल्ड. लेकिन अपनी सीमाओं में नियम वो कठोर भी हैं, स्ट्रांग भी हैं और बोल्ड भी हैं, लेकिन प्रिजम्पचुअस। उसने मान लिया है कि यही नियम है, अकाट्य नियम है, ये बदल नहीं सकते। दिस सेकेंड विद एंथुजियाज्म ब्राइट फ्लेम इन हर हार्ट बट राउंड हर ब्राउज द नाइट। रिलीजन हृदय के अंदर भाव है लेकिन यहां अंधकार है। और आप देखें अक्सर यही समस्या रही है रिलीजन की, भाई मानना है तुमको, जानना नहीं, मानना है, विश्वास का आधार है, आप प्रश्न नहीं कर सकते हैं, अनुचित है प्रश्न, हृदय में भाव है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या बना दिया, भगवान को भी, भगवान तो भाव के भूखे हैं, वो बेचारे भूखे हैं हमसे, मतलब उसमें कितनी सारी चीजें जोड़ के हम लोगों ने भगवान पर भी थोप दी। हमारी मानसिकता है दंड देंगे भगवान, पुरस्कार देंगे भगवान, कंपनी के CEO की तरह। तो भगवान हमें कुछ सिखाना चाह रहे हैं, मानो वो कोई टीचर हैं, उनका और कोई काम नहीं है, हमको सिखाएंगे ऐसे झकझोड़ के। तो ये सारे रिलीजन के अंदर क्यों, क्योंकि उसने ज्ञान को किनारे कर दिया, भाव से वो चला आगे बढ़ा। राउंड हर ब्राउज द नाइट फेडेड एज दिस एडवांस्ड। लेकिन वो रिलीजन धीरे धीरे फेड हो रहा है जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है। 100 वर्ष पूर्व लिखा है श्री अरविंद ने, 100 वर्ष से ऊपर दिख रहा है ये, इसका असर है ना। शी कुड नॉट बेयर दैट सर्चिंग गेज नॉर द स्ट्रॉन्ग चिलिंग एयर दीज थॉट्स क्रिएटेड नरिशिंग अवर पार्ट्स ऑफ माइंड बट पेट्रीफाइंग ह्यूमन हार्ट्स। रिलीजन को वो विज्ञान की जो गेज है ना, सर्चिंग पियर्सिंग, दिखाओ कहां है भगवान, दिखाओ कहां है भगवान, भावना से थोड़ी होता है, प्रमाण दो प्रमाण दो प्रमाण दो, पियर्सिंग गेज। अब होते हमें याद होगा जब हम बचपन में कोई प्रश्न करो, माता पिता बहुत सवाल करता है, बहुत बहस करता है, शायद हम सब इससे गुजरे हैं, मैं भी गुजरा हूं इतने सवाल, ये हमारे पुरखों ने बताया है, एंड ऑफ द स्टोरी, डोंट क्वेश्चन। और रिलीजन कंट्रोल भी इसी तरह करता है, यू कैनॉट क्वेश्चन, ये बिलीफ है, मान्यता है, आपको मानना है, लेकिन मनुष्य को तो बहुत आगे जाना है। स्ट्रॉन्ग चिलिंग एयर, जो इंटेलेक्ट है वो आप होंगे, कोई भी आप संत महात्मा होंगे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, आप हमको प्रमाण दीजिए। और साथ में क्या लिखते हैं, नरिशिंग अवर पार्ट्स ऑफ माइंड बट पेट्रीफाइंग अवर हार्ट्स। अब उस कोल्डनेस के कारण क्या हुआ है कि आपकी जो माँ है जिनके साथ आपका भाव जुड़ा है, शी इज अनदर वुमेन, योर डैड्स वाइफ। अब वो हृदय के जो भाव हैं, जो सृष्टि से अलग ढंग से जुड़ते हैं, जो सृष्टि के पीछे एक प्रेजेंस महसूस कर रहे हैं, जिनके अंदर पुण्य भाव है, पूजा का भाव है, सीक्रेटनेस का भाव है, वो सब चला जाएगा। हम लोग बड़े दुखी हो रहे हैं लेकिन वेट फॉर द एंड, ये फोरसीन है, फोरटोल्ड है, 125 वर्ष पहले किसी ने इसकी कल्पना नहीं की होगी। हाँ कुछ वैज्ञानिक ऐसा कहते होंगे, जब पहली बार चंद्रमा पर पहुंचा था ना अपोलो, तो मुझे याद है हमारे घर में ये डिस्कशन चलते थे, ये कैसे हो सकता है, चांद पर कैसे जा सकते हैं, चांद तो शिव जी के माथे पर है, कहीं और गए होंगे, झूठ कह रहे हैं। अब चांद पे गए वो, लेकिन कौन सा चांद है शिव जी के माथे पर, ये जानने की हमने चेष्टा ही नहीं की, और इसका क्या डीपर अर्थ है। तो ये सारी चीजें श्री अरविंद देख रहे हैं। साइंस वॉज वन, द अदर गेव हर नेम रिलीजन। साइंस लॉ, लॉ मीन्स इन दिस सेंस, सारी फिजिकल, फिजिक्स है ये, प्योर फिजिकल लॉ है, और दूसरा रिलीजन है। बट ए थर्ड बिहाइंड देम केम वेल्ड वेग रिमोट एंड हैड एज येट नो राइट अपॉन द वर्ल्ड बट लिव्ड इन हर ओन लाइट। ऑब्वियसली वो स्वयं प्रकाश कौन है, स्पिरिट, स्पिरिचुअल एज, वो प्रतीक्षारत है, वो कह रही ठीक है दोनों को डिबेट कर ले दो आपस में। और फिर श्री अरविंद, बहुत ये लंबा है, इस पर हम लोग बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन यहां विज्ञान की कुछ बात बातें, एक जगह वो एफोरिज्म में कहते हैं कि जो साइंस है बहुत इस पर उसने मार्वेलस सर्जरी और ये सब करी है नो डाउट, लेकिन उसने मनुष्य को कमजोर बनाया है, ये भी सत्य है। और यहां पर उसकी बात हो रही है, वाइड वेर द विक्ट्रीज ऑफ द एंजल प्राउड, कौन? विज्ञान, हु कॉन्कर्ड नाउ एंड इनर प्रेज वेयर लाउड द नेशंस। विज्ञान के ऊपर बनाओ, विज्ञान के ऊपर बनाओ, विज्ञान के ऊपर सब कुछ, विज्ञान पर ही राष्ट्र का विकास हो सकता है, बिना विज्ञान के हम विकसित नहीं हो सकते। नेशंस प्राउड, जो विज्ञान जिसके हाथ में वो आगे बढ़ गया। फ्यू इवन येट टू द अदर क्लो, फिर धीरे धीरे बहुत कम थे जो रिलीजन को मान करके पकड़ करके बैठे थे। एंड सम वेयर सोल्स ऑफ नाइट एंड सम वेयर सोल्स ऑफ लव, ये जो रिलीजन को पकड़ के बैठे थे दो प्रकार के थे, एक जिनके हृदय में सच में प्रेम था ईश्वर के प्रति, लेकिन वो साइंस को कन्विंस नहीं कर पा रहे थे कि प्रेम नाम की भी कोई चीज होती है, और दूसरे जो सोल्स ऑफ नाइट, क्यों? क्योंकि अंधकार, क्योंकि उन्होंने ज्ञान की ओर नहीं गए तो इतना अधिक अंधकार हो गया था। तो क्या रिलीजन की समस्या क्या होती है? क्योंकि वो ज्ञान को डिस्कार्ड करता है तो उसमें फैनेटिसिज्म, फंडामेंटलिज्म, इसकी प्रॉब्लम होती है। तो वो सब देख रहे हैं श्री अरविंद, और धीरे धीरे आगे कैसे कैसे कुछ पंक्तियां नीचे, ए सेंचुरीज प्रोग्रेस लिव्ड बिफोर माई आईज। अब क्या देख रहे हैं श्री अरविंद, 100 वर्ष के बाद क्या होने वाला है, उसमें क्या क्या घटित होगा। ये पोयम 1900 के प्रथम दशक में लिखी हुई है, शायद संभवतः 1901-1902। क्या क्या उस समय हुआ था, देखिए क्या लिख रहे हैं वो। डिलीवर्ड फ्रॉम अमेजमेंट एंड सरप्राइज, मैन स्पिरिट मेजरिंग हिज वर्ल्ड्स अराउंड, द लॉज ऑफ साइट डिवाइन एंड लॉज ऑफ साउंड, हर चीज के नियम वो जान लेगा, देश विदेश हर चीज को वो माप लेगा, सौर मंडल और आगे जो जो है उसको वो माप लेगा, दूरी माप लेगा, और साथ में और क्या क्या होगा। लाइट वॉज नॉट हिडन फ्रॉम हर सर्चिंग गेज, नॉर मैटर कुड डिनाई इट्स मीरियड मेज। जो चीज रिलीजन नहीं जान पाया कि ये जड़ तत्व क्या है, उसने जड़ तत्व को नकार दिया, ये तो बंधन है, ये माया है भाई, जड़ है जिसने बनाया है, भगवान की माया है, कुछ तो पर्पस होगा इसका। या तो हम कहें कि भगवान ने कोई मूर्खता कर दी कि जड़ तत्व बन गया, ना जाने क्यों हो गया, अब इससे किसी भी तरह छुट्टी मिल जाए, छुट्टी मिलती नहीं जड़ तत्व से, बांधता भी है ऐसा जकड़ करके। तो जिसने बनाया उसने, एक सुबह जो गाना आप बता रहे थे दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तो कुछ तो मन में समाई थी जो ऐसी बनाई, तो उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल टू द ओल्ड इंक्वायरी फॉर द फार केम नियर, जो दूर था वो नजदीक आ गया, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप, टू द कोल्ड इंक्वायरी फॉर द फार केम नियर, द स्मॉल लूम्ड लार्ज, द इंट्रिकेट ग्रू क्लियर, छोटे छोटे जीन्स एटम्स ये सब की को डिस्कवर कर लिया, मेजरिंग एंड प्रोबिंग द स्ट्रॉन्ग एंजल स्ट्रोड, डिजॉल्विंग एंड कंबाइनिंग टिल शी ट्रॉड फर्मली अमंग द स्टार्स, गैलेक्टिक ट्रेवल हो रही है, कुड वे देयर फॉर्म्स, जो तारे नक्षत्रों को मेजर कर सके, ये क्षमता उसके अंदर आ गई, फॉर टोल द अर्थक्वेक्स, एनालाइज द स्टॉर्म्स, डाउट सीम टू एंड एंड वंडर्स रेन वॉज क्लोज्ड। कोई भी चीज नहीं थी जो जिसको कहा जा सके कि भाई वंडर है, क्योंकि साइंस ने हर चीज की प्रोसेस आपको बता दी। हॉर्सेज ऑफ स्टीम वेयर बिटेड एंड द लाइटनिंग्स मेड ए टीम टू ड्रॉ आवर चेरियट्स, स्टीम इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन और लाइटनिंग्स और सोलर, ये सब जो हमारे चेरियट्स को अब वो चलाएंगे, वो घोड़े घोड़ा गाड़ी का समय चला गया। हेवन वॉज स्केल्ड एट लास्ट एंड द लाउड सी सबड्यूड, समुद्र को बांध दिया और समुद्र की ऊर्जा को भी उपयोग में लाने लगे. डिस्टेंस रिजाइंड इट्स स्ट्रॉन्ग ऑब्स्ट्रक्शंस टू द मास्टरिंग माइंड. और ये तो डिस्टेंस रिजाइंड अभी और होने वाला है. डिस्टेंस रिजाइंड मतलब अब दूर कुछ भी नहीं रहा. देखिए केवल दूरभाष के माध्यम से नहीं, कितनी अधिक चले गए फेस टाइम, वो सब कोई कल्पना कर सकता था इसकी, ये तो कुछ भी नहीं है. टाइम ट्रैवल की बात कर रहे हैं लोग, टाइम लूप में जा करके, जिसके थ्रू आप शॉर्टकट ट्रैवल कर सकते हो, पास्ट में जाना, फ्यूचर में जाना, ये सब ऑलरेडी मनुष्य की विज्ञान की कल्पना की परिधि में आ गया है. और जो चीज कल्पना की परिधि में आ जाती है उसकी संभावना बढ़ जाती है घटित होने की. तो ये सब कुछ कर लिया मनुष्य ने. अब जब देख रही है जो धर्म की देवी है, मत संप्रदाय जिसे, वो चकित होकर देख रही है, ये कहां से आ गया, इतना आगे चला गया मेरे से. अब वो फेड हो रही है, उसका सूर्य अवस्थ हो रहा है. माँ कहती है द एज ऑफ रिलीजन्स इज ओवर. हम लोगों को सुनने में बड़ा बुरा लगता है, लेकिन क्यों? बिकॉज कुछ और उससे बेटर आना है. ये नहीं कह रही है, ये भी नहीं कह रही कि साइंस की एज है. द एज ऑफ रिलीजन्स एंड आई मे एड एंड ऑफ साइंस एंड आइडियोलॉजीज इज ओवर. तो यहां रिलीजन की जो देवी है वो उस विज्ञान की देवी को कुछ कह रही है, मंत्रणा दे रही है. देन द अदर अरोज एंड मेट दैट स्पिरिट रोबस्ट. अदर जो विज्ञान की जो धर्म की देवी है, हु लेबर्ड शी नाउ ग्रू ए शेड हु मस्ट फेड होली अवे. धीरे धीरे विज्ञान रिलीजन फेड हो रहा है. अब देखिए ये अभी आने वाले समय में वी कैन प्रेडिक्ट एक एथिज्म का दौर आने वाला है, हमें पसंद हो या ना पसंद हो. क्यों? एथिज्म में क्या टूटता है? भगवान तो नष्ट नहीं किए जा सकते, लेकिन हमारे जो कंसेप्शंस हैं, धारणाएं हैं, वह जाएंगे. एक 12 साल 12वीं क्लास की बच्ची से, पटियाला स्कूल की बात है, टॉक हो रही थी, तो उस बच्ची ने अंत में पूछा हाथ उठा के, सर एक 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 बात मैं बोलना चाहती हूँ. मैंने कहा पूछो बच्चे. कहती है मैं भगवान में विश्वास नहीं करती. मैंने कहा कोई बात नहीं, भगवान तुम में विश्वास करते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है. पर फिर मैंने कहा कौन से भगवान में विश्वास नहीं करती हो? बोले वो भगवान जो दंड देता है, पुरस्कार कर देता है. मैंने कहा गुड, आई एम ऑन द सेम पेज, मैं भी ऐसे भगवान में विश्वास नहीं करता हूं. तो वो कुछ देर के चकित हुई. फिर मैंने कहा अच्छा तुम बताओ, तुम कैसे भगवान में विश्वास करोगी? तो कहती जो प्रेम करता हो. मैंने कहा गुड, तो हम दोनों तो एक ही बात कर रहे हैं. अब वो लड़की क्या कर रही थी? वो भगवान में अविश्वास नहीं कर रही थी, भगवान के कंसेप्ट में अविश्वास कर रही थी. क्योंकि हमने भगवान को भी एक ह्यूमन फॉर्म दे दिया. क्रोधित हो जाएंगे, माँ के बारे में भी हम लोग कहते हैं ना, माँ गुस्सा हो जाएंगी, माँ टेस्ट ले रही है. माँ टेस्ट लेंगी तो कौन खड़ा होगा? भला कोई माँ बच्चे का टेस्ट लेती है? टीचर्स लेते हैं. माँ तो बच्चे को संभालती है जब वो फेल होके आता है, और अगर माँ टीचर है तो बच्चे को ग्रेस मार्क देके पास करवाती है. कहते हैं लोग, अभी भी मैंने माँ श्री अरविंद के उसमें सुना है, व्हाई इज मदर टेस्टिंग मी. मैं कह पहले तो अपनी भाषा सुधारो, अगर माँ टेस्ट करेंगी तो सब फेल होंगे. वो जानती है हमें, हम क्योंकि हम उनसे ही निकले, उन्हीं के अंश हैं. पर ये कंसेप्शन है ना, भगवान टेस्ट ले रहा है, भगवान पीड़ा दे रहा है. क्यों? इतने देखिए भयानक भयानक कंसेप्ट है. एक कंसेप्ट बताता हूँ रिलीजन में, भगवान हमें कष्ट इसलिए देता है ताकि हम उनको याद करें. आप कल्पना कीजिए कैसा क्रूर होगा वो व्यक्ति जो आपको पीड़ा दे इसलिए कि आप उसको याद करें. क्या वो पूजनीय होगा? कोई एक संभ्रांत एक अवेकेंड मनुष्य भी ऐसा नहीं करेगा. लेकिन मानते हैं लोग कि वो नरक में धकेल देगा आपको, रोस्ट होने के लिए आपकी सेंगदाना बन रहा है भगवान के रौरव नरक में. इस भगवान मतलब क्या हमने बना दिया उनको? फिर हम कहते हैं वैसे वो प्रेम में है, करुणा में है, कहीं कुछ मिसिंग है. तो यहां पर वो क्या कहती है, रिलीजन फेड स्लोली होली अवे येट टू हर फेलो क्राइड. कौन है फेलो? विज्ञान. जाते जाते वो विज्ञान की देवी को कुछ कह रही है. क्या कह रही है? आई पास, जा रही हूं, मेरा समय आ गया, जानती हूं मैं. आई पास फॉर दाउ हैज लेबर्ड वेल एंड वाइड. मानना पड़ेगा तुमने बहुत मेहनत की है, और वाइड, हर क्षेत्र में तुमने किसी क्षेत्र को छोड़ा नहीं, मैंने तो भावों को पकड़ा और एक उपस्थिति का अनुभव, लेकिन तुमने तो जड़ तत्व जिसको मैंने छोड़ दिया था उस पर भी काम किया. वो कहती है दाउ हैस्ट लेबर्ड वाइड वेल एंड वाइड, दाउ थिंकेस्ट टर्म एंड एंड फॉर दी आर नॉट. एक भूल मत करना, मैंने भी यह भूल करी थी. और कुछ रिलीजन है जो अभी भी ये मानते हैं, एक्चुअली वो ऐसे नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि एक दिन दुनिया का अंत होगा. दुनिया का नहीं होगा, आपके रिलीजन का अंत होगा, क्योंकि दुनिया आपके रिलीजन से ना प्रकट हुई थी, ना आपके रिलीजन से चलती है, ना आपके रिलीजन के साथ उसका अंत. लेकिन उनकी बात से ही अंत होगा. हाँ, एक पर्टिकुलर धर्म विशेष का अंत हो सकता है. तो वो इस प्रकार की बातें. तो यहां पर वो रिलीजन जाते जाते कह रही है विज्ञान को, क्योंकि वो देख रही है वो उसका अंत क्यों हो रहा है. Thou thinkest term and end for thee are not, but though thy pride is great, thou hast forgot. तुम कुछ भूल रही हो, देख रहा हूं मैं कि तुम्हारे, देख रही हूं मैं कि तुम्हारे बहुत प्राइड है, आ गया है, कुछ भी कर सकती हूं. मैंने तो ऐसी सी कहानियां और लोग व्हाट्सएप पर कि देखो साइंस प्रूव कर रही है गॉड, कैसे उसने पीनियल ग्लैंड, अरे तो आपने तो खत्म कर दिया गॉड को अगर पीनियल ग्लैंड में बसा दिया. रिलीजन तो कहता है बसो मेरे नैनो में नंदनाल, ये बसो मेरे पीनियल ग्लैंड में भगवान, ये कहां से आ गया. मतलब वो आपने जड़ तत्व बना दिया, वो मैटर बना दिया. दैट्स नॉट इट, वो भी मिस कर रही है कुछ. तो कौन तुम्हारी प्रतीक्षा, बट दो दाई प्राइड इज गेट दाउ हैस्ट फॉरगॉट द स्फिंक्स दैट वेट्स फॉर मैन बिसाइड द वे. स्फिंक्स, सिंहिका, वो ग्रीक मिथोलॉजी की कहानी है, सब मिथोलॉजीज में है, भारत में भी है, बाकी जगह भी है. भारत में ये बड़े अलग ढंग से है. वो रावण की द्वार की रक्षा करती है. वो स्फिंक्स, ब्राइट स्फिंक्स भी है, गोल्डन और डार्क स्फिंक्स भी है. वो अंधकार के रहस्य, आप रहस्य को जानना है सिंहिका के द्वारा गुजरना है. और रावण के राज्य में ये प्रेडिक्शन था, जिस दिन ये द्वार सिंहिका की मृत्यु होगी उस दिन रावण का राज्य समाप्त होगा. कौन मार देते हैं उनको, हनुमान. तो कहानी बड़ी सिंबॉलिक है. लेकिन ये सिंहिका की स्टोरी है कि एक पुत्र है, एक राजा, उसका बेटा है इडिपस, और उसको ये भविष्यवाणी दी गई है राजा को, ये तुमको मारेगा, तुम्हारा राज्य हत्याएगा और अपनी ही माँ से विवाह करेगा. ये बड़ी मिस्टिक टेल है बाय द वे. तो वो राजा घबरा जाता है, इडिपस को दूर भेज देता है, लोगों कहता है इसको मार डालो. वो जाते हैं, उनको दया आ जाती है, एक अंगूठा काट करके राजा को दिखा देते हैं, हमने मार दिया, मारा नहीं है. अब वो बला बड़ा होता है, अब देखिए साथ में रहता तो ये कुछ नहीं होता. भेज दिया उन्होंने, उसने दूर, ये सोच के कि मर गया है. और राजा अपने कुकर्म जो भी उसमें लगा हुआ था, अब ये बड़ा होता है, बड़ा होता है, विद्रोह की अग्नि, और धीरे धीरे ये अपनी किंगडम को रिक्लेम, अपनी किंगडम नहीं जानता है वो वहाँ पे प्रेरित होता है कि मैं वहाँ पहुँचूँ और रिक्लेम करूँ या युद्ध करूं. तो रास्ते में वो जा रहा है तो एक डेजर्ट है, रेगिस्तान, वहां ये सिंहिका बैठी है. इजिप्ट में ये, वहां इज वन ऑफ द सेवन वंडर्स. सिंहिका कौन है, चेहरा तो उसका स्त्री का है और उसकी बॉडी लायन जैसी है और उसके पंख हैं. माने क्रीचर है भी और नहीं भी है, अजीब सा है, मिस्ट्री. तो वो सिंहिका कहती है रुको, तुम्हें जाना है उस पार, हाँ मेरा एक प्रश्न है, इसका उत्तर दो, नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी और दे दोगे तो मैं मर जाऊंगी. अच्छा क्या प्रश्न है, कौन सा वो जीव है जो सुबह में चार पांव पे, दोपहर को दो पांव पर, रात को तीन पांव पर चलता है. इडिपस कहता है आई एम द आंसर, बचपन में मैं चार पांव पे चलता हूं, युवा अवस्था में दो पांव पे चलता हूं, बुढ़ापे में लाठी लेके तीन पांव, मैन इज द आंसर. तो सिंहिका कूद जाती है और मर जाती. यानी इन सब परिवर्तन, लेकिन देखिए कितनी मिस्टिक स्टोरी है, परिवर्तनशील, सब कुछ जो परिवर्तनशील है उसके अंदर परमानेंट कौन है, आई एम द आंसर, वही जीव है. तो सिंहिका मर जाती, बिकॉज ही नोज द सेल्फ, दोज हु नो द सेल्फ डेथ डाइज फॉर देम. तो चला जाता है, कौन कर करता है, उसको पता नहीं है कि ये मेरी माँ है, माँ से विवाह भी हो जाता है. तो वो सारी कहानी वहां समाप्त होती है. तो कहते हैं तो रिलीजन कह रही है एक दिन उसका प्रश्न तुम्हें उसका उत्तर देना होगा. क्या प्रश्न है? हर क्वेश्चन शैल अवेट दी दैट रिप्लाई एज ऑल वी मस्ट फॉर दे हु कैनॉट डाई. सारे परीक्षाओं में आप पास हो गए, फर्स्ट लास्ट फर्स्ट, राज सिंहासन पर बैठ गए, सब कुछ आपको लग रहा है कि ढोल नगाड़े पीटे जा रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न, शेष प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और यदि आपने नहीं दिया तो मृत्यु. शी स्लेज देम एंड देयर मैंगल्ड बॉडीज लाई अपॉन द हाईवेज ऑफ इटर्निटी. बहुत गए हैं इस रास्ते से, अंत में सिंगिका का प्रश्न आता है, शी स्लेज देम. वहां पे अगर आप फॉल्टर हुए और बोले मैं तो, आपको पता है मैं डॉक्टर आलोक पांडे हूं और गॉन विद द विंड, मैं वो महान राजा हूं, देखिए गुणगान हो रहा होगा, गॉन. स्लेज देम एंड देयर मैंगल्ड बॉडीज लाई अपॉन द हाईवेज ऑफ इटर्निटी. देयरफॉर इफ दाउ वुड्स लिव नो फर्स्ट दिस थिंग, हे विज्ञान की देवी, तुम अगर चाहती हो कि तुम्हारा राज्य कभी ना समाप्त हो तो ये पहले जानो. क्या जानो? हु दाउ आर्ट इन दिस डंजियन लेबरिंग. तुम कौन हो जो इस यहां पे ये कार्य कर रही हो? और फिर बड़ी सुंदर बात, एंड साइंस कॉन्फिडेंटली, नथिंग एम आई बट अर्थ. जानती हूं मैं तो जड़ हूं, मट्टी का ढेला हूं, यही हूं मैं. नथिंग एम आई बट अर्थ, ए मोल्ड, ए प्लाज्मा, ए गैस, ए लिटिल दैट इज मच. इस विज्ञान की कुछ और पोएम्स हम लोग पढ़ेंगे, बड़ी मजेदार है. कि कुछ नहीं हूं मैं, मिट्टी का ढेला हूं, एक गैस हूं, एक प्लाज्मा है, एक जीन्स है, केमिकल है, यही है मैं, जान गई हूं और मुझे बताने की जरूरत नहीं है. इन दीज ग्रे सेल्स दैट क्विवर टू ईच टच द सीक्रेट लाइज ऑफ मैन, दे आर द थिंग कॉल्ड आई, ब्रेन. कभी सुना है किसी को पूछते हुए, जब कोई कहता है आप कौन है, कोई ऐसे करता है मैं ये हूं, सब कहते हैं मैं ये हूं. इंस्टिंक्टिवली हम जानते हैं कि ये यहां हमारा स्व है. अगर कोई ऐसे कहने लगे मैं ये हूं तो आप कहेंगे भैया पास में साइकेट्रिस्ट है, इलाज करवाओ. माता क्यों पीट रहे हो? मनुष्य इंटूटिवली ये जानता है कि ब्रेन इज नॉट द आई, लेकिन विज्ञान कहने पर तुला है, सब कुछ ब्रेन के अंदर घटित हो रहा है. मैटर इंसिस्ट एंड मैटर मेक्स रिप्लाई. प्रश्नकर्ता भी जड़ तत्व है और उत्तर देने वाला भी जड़ तत्व है. शेक्सपियर वॉज दिस फोर्स इन जीसस यर्न्ड एंड कॉन्कर्ड बाय द क्रॉस, दिस ओनली लर्न्ड द सीक्रेट ऑफ द सन्स दैट ब्लेज अफार, दिस वॉज नेपोलियन जायंट माइंड ऑफ वार. बस कुछ नहीं, ये आपको लग रहा है नेपोलियन महान था, शिवाजी महाराज की इतनी परफेक्ट प्लानर थे, आपको लग रहा है कि फलां ऋषि थे, मुनि थे, अवतार थे, कुछ नहीं थे, ब्रेन था, ब्रेन से कॉन्शियसनेस निकली है. इसमें ये बड़ा मेरा तो डियर विषय है, मैं इसमें विस्तार में नहीं जा रहा हूँ. अगर प्रश्न हुआ तो ये उलट के देखता है चीज़ों को. हमारी साइंस है कॉन्शियसनेस बिकेम दिस, और ये जो साइंस है जड़ विज्ञान से जो उपजी है वो कहती है कॉन्शियसनेस इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ ब्रेन, और उस पर बात अटकी पड़ी है. आई हर्ड एंड मार्वल्ड इन माई सेल्फ टू सी. आप श्री अरविंद वापस आ जा कह रहे हैं, मैंने ये सुना तो मुझे घोर आश्चर्य हुआ. द इन्फिनिट डिनाई इन्फिनिटी. कौन है इन्फिनिट? मनुष्य. वो डिनाई कर रहा है अपने ही इन्फिनिटी को, अनंतता को डिनाई कर रहा है. येट द वियर्ड पैराडॉक्स सीम्ड जस्टिफाइड, इवन मिस्टिसिज्म श्रैंक आउट मिस्टिफाइड. उसके सामने रहस्यवाद, मिस्टिक, सब ये तो क्या कह रहा है, और वो प्रूफ कर रहा है कन्विंसिंग थ्योरीज के साथ, तो सब इधर उधर भागने लगे. तब लिखते हैं श्री अरविंद, बट द थर्ड एंजल केम एंड टस्ट माई आईज. अब ये थर्ड एंजल जो आने वाली युग है, जिसको माता जी कहती हैं, श्री अरविंद कहते हैं स्पिरिचुअल एज ऑफ मैनकाइंड. स्पिरिचुअल एज इज नॉट रिलीजियस एज. रिलीजियस एज मान्यताओं के आधार पर है, मानने पर के आधार पर है. स्पिरिचुअल एज जानने और बनने के आधार पर है. इतना काफी नहीं है कि हम बाहर पूजा कर रहे हैं, हम उस सत्य को अपने अंदर धारण करें. कौन शिवत्व को धारण करेगा? वो नहीं जो जाके मंदिर में केवल पूजा कर ली, वो जो विष को पान करे कर सकता है बिना फ्लिंचिंग, विदाउट फ्लिंचिंग. कौन श्री कृष्ण के सत्य को अपने अंदर धारण करेगा जो हर चीज में आनंद लेता है. कुरुक्षेत्र में भी वो ऐसी मुस्कुराता हुआ बैठा है. उसके लिए देखिए कितना इवोल्यूशन चाहिए. तो ये जो स्पिरिचुअल एज जिसकी बात माता जी कहती हैं, तो आई सॉ द मॉर्निंग्स ऑफ द फ्यूचर राइज. तो अपने ही अंदर वो देखते हैं कि हाँ कालांतर में भविष्य का उदय. और उसमें वो क्या देखते हैं श्री अरविंद, यहाँ प्रलय की भविष्यवाणियां हो रही हैं, डूम्स डे हो रहा है, ये सब कहने दीजिए लोगों को, उनकी सीमा है. विज्ञान का जैसा अभी है और रिलीजन का जैसा अभी है, उसका डूम्स डे तो है. आई हर्ड द वॉइसेज ऑफ एन एज अनबॉर्न, आगत युग जिसका जन्म भी नहीं हुआ है, उसकी आहट वो सुन रहे हैं. दैट कम्स बिहाइंड अस एंड अवर पैलिड मॉर्न, उसके सामने ये हमारे दिन तो फेड हो जाएंगे. तभी वो कहते हैं एसेज ऑन द गीता में, वी डू नॉट बिलोंग टू द डॉन्स ऑफ द पास्ट बट टू द नून्स ऑफ द फ्यूचर. वो डॉन्स आवश्यक थी, वो हमको यहां तक ले आई हैं, उनको हमें प्रणाम करना है. लेकिन आने वाली जो सुबह और जो नून्स आने वाली हैं वो अद्भुत होंगी. एक बार श्री अरविंद को किसी ने, दिलीप कुमार रॉय ने एक पत्र लिखा किसी की कविता पर. उस कविता में उसने लिखा है हेल द लास्ट ऋषि श्री अरविंद को. तो दिलीप कुमार रॉय कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं खुश हूं या दुखी हूं. खुश हूं क्योंकि आपको उसने लास्ट ग्रेटेस्ट ऋषि बना दिया. दुखी इसलिए कि आपके बाद कोई और ऋषि नहीं होगा. श्री अरविंद कहते हैं ठीक ही लिखा है, क्योंकि आने वाले काल में जो होगा वो ऋषि मुनियों से आगे की चीज होगी. सुपरमैन वो एक अलग कैटेगरी है, उसकी बात बाद में होगी. तो क्या देखा उन्होंने, वन सेट टू मैन नो दाई सेल्फ इन्फिनिट. तुम ही वो अनंत हो जिसने, अनंत ने तुम्हारे अंदर यह नाम रूप धारण किया है. हु शेल डू माइटियर मिरेकल्स देन दीज. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कोई चीज है, डिवाइन इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आपने फीड किया है ना मनुष्य ने उसके अंदर डेटा, उसके बाद बड़ा डेंजरस काम किए कराए जा सकते हैं. डिवाइन इंटेलिजेंस क्या है, डिवाइन इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको फ्यूचर बताएगी बेस्ड ऑन दी पास्ट कैलकुलेशन, जैसे चीजें चल रही हैं. पर जो डिवाइन इंटेलिजेंस है वो वह बताएगी जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ, वो कृत्य करवाएगी जो अभी तक किसी ने नहीं किया. Who shall do mightier miracles than these? Infinite moving mid infinities. अनंत से क्या अर्थ है, ज्ञान की सीमा नहीं. साधारण शब्दों में अगर कहें कैसा होगा वो नव मानव, ज्ञान की सीमा नहीं, प्रेम की सीमा नहीं, आनंद की सीमा नहीं, शांति की सीमा नहीं. क्यों, अनंत असीम से वो अपनी श्वास को ड्रॉ करेगा. ऊर्जा की सीमा नहीं, शक्ति की सीमा नहीं. अभी हम सीमित हैं, सीमित है इसलिए मृत्यु है. जो अनंत है असीम है उसकी मृत्यु हो नहीं सकती, सीमित की मृत्यु होती है. मृत्यु क्या है, जो सीमित है और सीमाओं में बंधा हुआ, जो सोच रहा है कि मैं सीमित हूं, तो मृत्यु उसको बताती है कि देख ये तूने माना सीमा. यही सिंगिका का क्वेश्चन है. और जो ये इस ज्ञान में जीने लगता है कि वो अनंत है, उसको ना केवल मृत्यु का भय चला जाता है, वो मर नहीं सकता क्योंकि उसकी सीमाएं नहीं है जिसको मृत्यु तोड़ सके. देन फ्रॉम आवर हिल्स द एंशिएंट आंसर पील्ड. और जब उन्होंने ये देखा तो वापस ऋषियों की वाणी सुनाई दी, हां हां ऐसा ही होगा. फॉर दाओ ओ स्प्लेंडर आर्ट माई सेल्फ कंसील्ड. अब मनुष्य कौन है, भगवान जिसने मास्क पहना हुआ है मनुष्य का. कीड़ा पतंगा कौन है, भगवान जिसने मास्क पहना हुआ है. इन द वर्म फोर्सेस द कमिंग गॉड, श्री अरविंद की वाणी है ना. भगवान की पहचान क्या है, तो कहते हैं ही डिसडेनिस्ड नॉट द क्लॉट टू बी. वो मिट्टी के ढेले को भी ऐसे नहीं है, ये तो मिट्टी का ढेला है. नॉर इवन He who disdainest not the worm to be, nor even the clod. कीड़े को ही कीड़ा है, ऐसे नहीं. हम तो मनुष्यों को भी ऐसे ट्रीट करते हैं, वो कीड़े को भी ऐसे ट्रीट नहीं करते हैं, और क्लॉड को भी, पत्थर के ढेले को भी नहीं. क्यों? He who disdainest not the worm to be, nor even the clod, therefore know by that humility that he is God. वो हर चीज में भगवान का दर्शन करता है. ये एक नया विज्ञान है, इसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन वो क्या होगा. फॉर दाउ ओ स्प्लेंडर आर्ट माई सेल्फ कंसील्ड सो हम अस्मी एंड द ग्रे सेल कंटेन्स मी नॉट द स्टार आई आउट मेजर एंड आई एम ओल्डर देन द एलिमेंट्स आर. पंच तत्व जो निकले, पंचभूत, उनसे भी पहले, तभी तो कहा गया उनको पुरुष पुरातन, क्योंकि उनके पहले कोई नहीं था, एंशिएंट ऑफ द एजेस. एलिमेंट्स तो बाद में आए, जिनसे ये पंच तत्व, पंचभूत, जिनसे ये सृष्टि बनी. तो मैं तो उसके भी पहले हूं. वेदर ऑन अर्थ और फार बियॉन्ड द सन आई स्टम्बलिंग क्लाउडेड एम द इटर्नल वन. बाहर से अगर तुम देखोगे, और बड़ी सुंदर इस पर श्री अरविंद का मेडिटेशन है, क्या तुम देख पा रहे हो वो जो पास से तुम्हारे वृद्ध गुजरा, बूढ़ा लाठी के सहारे चल रहा है, वह भी भगवान है. क्या तुम देख पा रहे हो उस लड़की को जो खिलखिलाती हुई चली गई बगल से, वह भी भगवान है. इन द ब्लू ऑफ द स्काई एंड द ग्रीन ऑफ द फॉरेस्ट हूज इज द हैंड दैट हैज पेंटेड द ग्लो व्हेन द विंड्स वर एस्लीप एंड द वूम्ब ऑफ द ईथर. इन अब एलिमेंट्स इमर्ज करने के पहले, विंड्स वर एस्लीप इन द वूम्ब ऑफ द ईथर. ईथर इज स्पेस और विंड्स इज वायु तत्व. When the winds were asleep in the womb of the ether, who was it bade them and raised them to blow? और फिर वो बताते हैं कि he is lost in the heart, in the cavern of nature. He is found in the brain, where he builds up the thought. In the pattern and bloom of the flower he is woven. In the luminous net of the stars he is caught. सब में वासुदेव का दर्शन. ये होगा आने वाला मनुष्य, और वही विश्व एकता का आधार बनेगा, और उसी से एक नया विज्ञान जन्म लेगा, क्योंकि वो ज्ञान के आदि स्रोत को जान जाएगा, और जो जानेगा नहीं, जीने एक हो जाएगा. तो ही विल डू मोर मिरेकल. जो हमने सुबह पढ़ा, श्री अरविंद क्या लिख रहे हैं, 10 साल की उम्र में मैंने अपनी केश से, गोल्डन हेयर से वेस्ट बनाई, एक वस्त्र बनाए सूर्य के लिए. वो मिरेकल जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते. वो मिरेकल्स क्या होंगे, थोड़े बहुत इंडिकेशंस हैं. जब अपोलो गया था, माता जी बताती हैं, किसी ने बताया, कहती हाँ वहाँ से वो जो फंस गया था ना, ऑक्सीजन की ख़त्म हो रही थी, देट टू कम बैक. तो माँ कहती हाँ वहाँ से मुझे डिस्ट्रेस कॉल आई थी, इंस्टेंटली आई वेंट देयर, फिर सारी चीज़ें ठीक करके. ये करेगा वो, छोटी मोटी चीज़ें इंटरवीन. सुनामी आई थी, कैसे पांडिचेरी के अंदर एक लड़की ने दृश्य भी देखा कि माँ दोनों हाथों से रोक रही हैं उस सुनामी को. वो चीज़ें जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते, और ये चीज़ें माँ ने अपने जीवन में, जब वो त्यों के पास जाती हैं, वो देखती है त्यों कर पा रहा है, लाइटनिंग्स को डाइवर्ट कर रहा है. कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा है, माँ कहती है. और फिर वो माँ से कहता है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा ये निर्जन स्थान में, तुम अकेली हो और मेरे पास इतनी सारी शक्तियां हैं, डर नहीं लगता तुम्हें? और माँ कहती क्यों डरूं मैं, हंसते हुए, मैंने उस अंतर्यामी को पा लिया है. ये करेगा वो. श्री अरविंद जैसे लोगों को ठीक करते थे, और इसीलिए निरुद्धा श्री अरविंद से पूछते हैं, अंतिम दिनों की बात है, हमने अपनी आंखों से देखा है, हजारों बार आपने लोगों को केवल दृष्टि मात्र से ठीक किया है, आप अपनी फोर्स को अपने ऊपर उपयोग में तो ला रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं? श्री अरविंद कहते हैं नो, नहीं कर रहा हूं. ये पूछते हैं क्यों? श्री अरविंद कहते हैं कांट एक्सप्लेन यू वॉन्ट अंडरस्टैंड. वो तो जा रहे थे, महान ईशा के यात्री बन रहे थे वो, उसमें भी उनकी भविष्यवाणी है कि कैसे उनके महापरायण ने एक द्वार खोला है, ये बाद में इसकी बात होगी। यहाँ रुकेंगे हम लोग इसके पहले कि सूर्य प्रताप जी इंडिकेट करें। ये अजीब नहीं लगता कि लोग योगी के बारे में हम सुनते हैं उन्होंने यों बैठे और उन्होंने सीधा सोलर वर्ल्ड में चले गए, सुना है ना हम लोगों ने। श्री अरविंद क्यों चले गए, महारात्रि में चले गए, और जब वो महान ईशा के यात्री, ये भी एक पोयम है पिलग्रिम ऑफ द नाइट, 6 पंक्तियां उसकी अंत की पर हम लोग सुन लेते हैं। आई मेड एन एसिग्नेशन विद द नाइट, मैंने निर्णय लिया कि हे रात्रि मैं तुझसे मिलूंगा। अब रात्रि तो प्रकाश से मिलने से डरती है, तो उसने कहा भाई मेरे डेन में आ जाओ। तो कहते हैं ठीक है। आई मेड एन एसिग्नेशन विद द नाइट, ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था उन्होंने इस महाप्रयाण के बारे में, कहा मिलेंगे, इन द एबिस वॉज फिक्स्ड अवर रेंडेवू, कहा मिलूंगा, तेरे घर में आऊंगा, मिलूंगा वहां एबिस इनकॉन्शियंट में, कैरिंग इन माई ब्रेस्ट गॉड्स डेथलेस लाइट, आई केम हर डार्क एंड डेंजरस हार्ट टू, मैं उस महाअंधकार से विवाह करने पहुंचा। अब देखिए ये हम लोगों की शिवरात्रि है, थोड़ा इसको और पढ़ी लें, टेम्पटेशन आ गया, छोटा सा इस बड़ी पोयम नहीं है, द पिलग्रिम ऑफ द नाइट, ये कलेक्टेड पोयम श्री अरविंदो की लाइफ में है, पेज 51 में। शिवरात्रि क्या है, शिव और जड़ प्रकृति का मिलन है, वही हम लोग देखते हैं कि शिवलिंग के अंदर वो प्रतीकात्मक रूप में। ये कौन सी महारात्रि है 5 दिसंबर को, यहां तो उस परम पुरुष का निश्चेतना के अंधकार में जाकर मिलन है। आई मेड एन एसिग्नेशन विद द नाइट, द पिलग्रिम ऑफ द नाइट, इन द एबिस वॉज फिक्स्ड अवर रेंडेवू, मीटिंग का स्पॉट डिसाइड किया है, इन माई ब्रेस्ट कैरिंग गॉड्स डेथलेस लाइट, आई केम हर डार्क एंड डेंजरस हार्ट टू वो। अब रात्रि ने क्या बोला है, देखिए ये शिव जी की कहानी में आता है, नैसर्गिक अवस्था में दोनों का मिलन होता है, क्यों याद ही ना स्टोरी, वो केव में जाते हैं माता सीता, माता पार्वती और शिव जी, तो उनको चंद्रमा को छोड़ना होता है, सब कुछ छोड़ना होता है, क्योंकि मेटेरियल नेचर उसको बेयर नहीं कर सकती है। तो क्या करते हैं श्री अरविंद, आई लेफ्ट द ग्लोरी ऑफ द इल्यूमिन माइंड, देखिए ये अलग शिवरात्रि का आनंद लीजिए इसमें, एंड द काम रैप्चर ऑफ द डिविनाइज्ड सोल, ये सब वो कर चुके हैं लेकिन उनको उसको भी बाहर रखना है, एंड ट्रेवल थ्रू ए वास्टनेस डिम एंड ब्लाइंड टू द ग्रे शोर वेयर हर इग्नोरेंट वाटर्स रोल, और निशस्त्र निहत्ता बिना किसी हथियार के केवल भगवान का प्रकाश हृदय में धारण करके मैं पहुंच जाता हूं उसके घर। आई वॉक बाय द चिल वेव थ्रू द डल स्लाइम, कीचड़ में कादों में डल, जहां से आगे बढ़ना मुश्किल है, जहां श्वास लेना मुश्किल है, इसका सावित्री में तो विस्तृत वर्णन है, एंड स्टिल दैट वेरी जर्निंग नोज नो एंड, वो भी क्योंकि वो अनंत का की शैडो है, जो एबिस क्या है, इनकॉन्शियंट क्या है, वो अनंत की ही छाया है, इसलिए उसको मारना आसान नहीं है, उसको भरा जाता है, अनंत की छाया है, जर्नी नोज नो एंड, लॉस्ट इज द लस्ट्रस गॉडहेड बियॉन्ड टाइम, देयर कम्स नो वॉइस ऑफ द सेलेस्टियल फ्रेंड। अब देखिए एक मिलन है जहां प्रकृति ऊपर उठ के मिल रही है, लेकिन जड़ प्रकृति के मूल में जब तक समाप्त नहीं होती चीजें, तब तक वो मिलेगी फिर कोलैप्स होगा, इसलिए चंद्रमा वैक्सेस एंड वेन जो शिवजी धारण करते हैं, चंद्रमा इज स्पिरिचुअल माइंड, और उसकी कहानी है, उनको श्राप मिला हुआ है कि मर जाओगे, तो शिवजी कहते हैं मरोगे नहीं, मैं धारण करता हूं, लेकिन श्राप तो श्राप है, तो तुम्हें तुम बढ़ोगे घटोगे, बढ़ोगे घटोगे, परमानेंस नहीं है उसमें भी, तो प्रकाश बढ़ेगा क्षीण होगा, लेकिन उन सबके पीछे शिवजी धारण किए हैं। तो ये एक एक कहानी है, यहां पर वो वहां चले जाते हैं लस्ट्रस गॉडहेड बियॉन्ड टाइम, उसको त्याग के। एंड अब ये देखिए दो दो पंक्तियों में उन्होंने भविष्य को कैसे बताया है जिसमें वो स्वयं निर्माण कर रहे हैं। एंड येट आई नो माय फुटप्रिंट्स ट्रैक शेल बी ए पाथवे टुवर्ड्स इमॉर्टैलिटी। 5 दिसंबर को उनका महाप्रयाण अंधकार के अंदर चले जाना, इसी के कारण आगत काल में अमृतत्व का पथ खुलेगा, क्योंकि कौन चले गए उस पथ से, प्रभु चले गए प्रकाश को हृदय में धारण करके। और इसका प्रमाण क्या था, 5 दिसंबर को जो हम सब जानते हैं 111 घंटे तक गोल्डन लाइट शरीर पहली बार मैटर के अंदर जड़ तत्व ने सुप्रामेंटल लाइट को धारण किया इतनी देर तक। तो आगे से कोई प्रश्न अगर करे कि भाई श्री अरविंद तो स्वयं चले गए, तो उसके क्यों बोलने के पहले कह दीजिए हाँ आपके और मेरे कारण चले गए, ताकि हम लोगों के लिए मार्ग सहज सुलभ हो सके। ठीक,
10 मिनट का ब्रेक है।